शेष है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में फिर हुए रिकॉर्ड कोरोना मामले दर्ज, 1290 संक्रमित, 4 की मृत्यु। भारत में आज दर्ज हुए 42,909 कोरोना मामले और टोक्यो पैरालंपिक्स का छठा दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वर्णमय। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में आज 1290 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ राज्य में 4 मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। इन चारों मामलों में व्यक्ति 50 से 70 के दशक में थे। डब्बों में जिन 50 के दशक में व्यक्ति की मृत्यु दर्ज हुई, उन्हें पहले से स्वास्थ्य समस्याएं थीं। यह राष्ट्र और राज्य दोनों ही के लिए दैनिक मामलों का नया रिकॉर्ड है, लेकिन प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लिन का कहना है कि ध्यान अब भी दैनिक टीकाकरण दर पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि दैनिक संक्रमण संख्या पर। उनका कहना है कि जैसे जैसे टीकाकरण दर बढ़ता जाएगा, अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या घटती जाएगी।
Whilst it's important for us to do everything we can to reduce those case numbers, we know that the greatest way to do that is getting vaccinated. Vaccination is the key for us in terms of our freedoms and in terms of reducing the rate of spread of the virus. The other number that's really critical for us to look at is the rate of hospitalisation. And it stands to reason that when you have more people fully vaccinated, you are likely to see the rate of hospitalisation and the rate of people in intensive care decline. And
Premier Berejiklian ne is baat ki pushti ki कि राज्य में अब 68 लाख टीके वितरित किए जा चुके हैं और यह कि राज्य की 2/3 वयस्क आबादी को टीके की एक खुराक और 36% आबादी को टीके की दोनों खुराकें प्राप्त हो चुकी हैं। उधर विक्टोरिया ने आज 73 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 52 मौजूदा प्रकोप से जुड़े पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि सामने आए मामलों में से कम 25 मामले संक्रमित होते हुए एकांतवास में थे। राज्य में बीते दिन 26,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके वितरित किए गए हैं। उधर क्वींसलैंड ने कोई भी नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले नहीं दर्ज किए हैं। हालांकि राज्य में होटल संगरोध में 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब लगातार 23 दिन से कोई भी नया स्थानीय संक्रमण का मामला नहीं दर्ज हुआ है। सरकार की कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश के सिलसिले में केवल वे जरूरी कामगार जिन्हें कम से कम कोरोना वायरस टीके की एक खुराक मिल चुकी है ही न्यू साउथ वेल्स से राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह आज सुबह ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के बीच एक बड़े हाईवे पर हुए ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन के बाद आता है। ये ड्राइवर बॉर्डर बंदी, तालाबंदी और अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ 2 प्राइम मूवर ट्रकों के साथ पैसिफिक मोटरवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर फेडरल सरकार ने जोर देकर कहा है कि कोविड-19 रिकवरी प्लान तय कार्यक्रम के अनुसार ही बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य और उपराज्य नेता जल्द ही तालाबंदी खोलने के प्रस्तावों का समर्थन नहीं करते, तो इसके भारी मानसिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम हो सकते हैं। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 70-80% टीकाकरण होने के बाद प्रतिबंध खुलने लगेंगे। ताजा आय आंकड़ों के हिसाब से 57% से कुछ ही ज्यादा 16 साल से अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाइयों को अब तक टीके की एक खुराक और 34% से कुछ ज्यादा ही को पूर्ण टीके मिल चुके हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगॉवन ने पूर्वी तट पर लगातार बढ़ रही संक्रमण संख्या पर चिंता जताई है। हालांकि उप प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस ने चैनल 7 से कहा है कि श्री मैकगॉवन को कभी न कभी तो दुनिया में वापस लौटना ही होगा।
In section 92 of the constitution is quite clear. Trade, commerce and exchange of people between borders, it's quite clear that that's supposed to be open and free since federation. When the rest of the nation is heading towards 70% vaccination, we're going to have to be reasonable. We're going to have to learn to live with COVID.
16 से 39 साल के सभी ऑस्ट्रेलियाई अब अधिकृत रूप से फाइजर टीके के लिए योग्य हैं। फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि आज यानी 30 अगस्त से 86 लाख लोगों के लिए यह बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस बुकिंग की योग्यता संबंधित सभी जानकारी जल्द ही सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। उधर फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि वे राज्य और उपराज्य जो राष्ट्रीय कैबिनेट के प्रतिबंधों में ढील देने की योजना के साथ सहमत नहीं हैं, उन्हें फेडरल सरकार से आर्थिक समर्थन की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। श्री फ्राइडनबर्ग ने सेवन नेटवर्क को बताया कि फेडरल समर्थन देश में 70-80% टीकाकरण पूर्ण होने तक ही उपलब्ध है, जिसके बाद राज्य प्रतिनिधियों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता निकालना होगा।
I know firsthand that there are a number of Western Australian tourism businesses that are struggling. That's why we agreed a package of economic support in partnership with the McGowan government for the tourism industry in Western Australia, because the border closures and the lockdowns have hurt them. When it comes to our federal government support, which is now tracking at more than $1 billion a week, I've been very clear that there can be no expectation by the states and territories that that level of support will continue once we hit those 70-80% targets.
The Australian में छपे न्यूज पोल सर्वेक्षण के अनुसार गठबंधन सरकार के लिए समर्थन अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। लिबरल नेशनल पार्टियों के प्राथमिक वोट 3 पॉइंट से फिसलकर 36% पर पहुंच गया है, जबकि लेबर ने 1 अंक की बढ़त प्राप्त करते हुए 40% पर पेंट बनाई हुई है। हालांकि लेबर के एंथनी एल्बनीजी के मुकाबले अब भी स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री के रूप में लोगों को ज्यादा पसंद हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी सेनाओं ने काबुल में ड्रोन के जरिए एक सुसाइड कार बॉम्बर को मार गिराया है, जो पेंटागन अधिकारियों के अनुसार काबुल हवाई अड्डे पर हमले की तैयारी में था। यह तब आता है जब अमरीकी सेनाएं 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से हटने की तैयारी में हैं। यह गुरुवार को अबे गेट पर हुए हमले के बाद अमरीका का दूसरा पलटवार था। गुरुवार को हुए हमले में 13 अमरीकी अधिकारी और कई ऐसे अफगान मारे गए थे जो नए तालिबान के राज से बाहर निकलना चाहते थे। उधर ब्रिटेन, अमरीका और दूसरे देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार तालिबान ने यह आश्वासन दिया है कि वे सभी विदेशी नागरिक और वे अफगानी जिन्हें किसी और राष्ट्र ने यात्रा की अनुमति दे दी है, वे अफगानिस्तान से बाहर सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। इस वक्तव्य के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और अन्य देश जरूरतमंद अफगानों को यात्रा अनुमति पत्र देते रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि वे काबुल एयरपोर्ट पर एक सुरक्षित क्षेत्र के निर्माण का समर्थन करते हैं, ताकि मुल्क से निकलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्र का निर्माण तालिबान पर दबाव बढ़ाएगा।
Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance.
This doesn't prejudge recognition because we have set conditions for it. First, Taliban must respect the humanitarian right and the protection of all those who have the right to be protected through asylum. The second point is for them to be very clear in regards to all the terrorist movements.
और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटे में 42,909 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 376,324 हो गई है और रिकवरी रेट फिलहाल 97.51% पर है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को अवनी लखीरा ने स्वर्ण पदक दिलाया है। अवनी ने शूटिंग में यह गोल्ड जीता है। 19 साल की इस शूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में अव्वल स्थान हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज अवनी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 249.6 का पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.71 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। टोक्यो पैरालंपिक्स में 400 मीटर महिला फ्रीस्टाइल तैराकी में अमेरिका और ब्रिटेन की टीमों के डिस्क्वालीफाई होने के बाद ऑस्ट्रेलिया कांस्य पदक से सीधे स्वर्ण पदक का अधिकारी हो गया है। उधर ट्रैक खेलों में ऑस्ट्रेलियाई एथलीट मैडिसन डी रिजारियो ने 800 मीटर ट्रैक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि आइसिस होल्ट ने 200 मीटर के मुकाबले में इन खेलों का अपना दूसरा रजत पदक अंकित किया। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के छठे दिन पदक तालिका पर आठवां स्थान जमाया हुआ है और आज हमारी टेबल टेनिस में दो और स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश रहेगी। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल छिटपुट बारिश के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में सुबह की ठंड के बाद धूप खिली रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 10 डिग्री जबकि न्यूनतम 0 डिग्री रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप है। यहाँ अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में भी कल तेज धूप छाई रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।